हरि बोल, राधे राधे,
राधे राधे,
राधे राधे,
राधे राधे,
वो भी बोल रहे हैं राधे राधे, राधे राधे,
राधे राधे,
राधे राधे। इतना सुंदर वातावरण है, हम लोग करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये पंछी किस कहां से लाएंगे आप, इतना सुंदर आवाज कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद में मोर बोलेंगे, फिर कोयल बोलेगी, फिर चिड़िया बोलेगी। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पर। डाल डाल पर पाति पाति पर राधे राधे को नाम, सब लोग राधा रानी को पुकारते हैं अपनी अपनी भाषा में। अब सब भाषा को राधा रानी समझती हैं क्योंकि ये हृदय की भाषा है। हाँ, ये अलग अलग आवाज नहीं है, ये हृदय की पुकार है। सब रहते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर रुको आप। सब तरह से एंटीना ऑन रखो, कान के एंटीना, नाक के एंटीना, आंखों के एंटीना, सब खुले रखो। सब तरफ से एक्सेप्ट करो क्या भगवान आपको दे रहे हैं। हाँ, तो आपका इस बहुत सुंदर स्थान में स्वागत है। इस सुंदर स्थान में आपका स्वागत है। इस स्थान का नाम ललिता कुंड है और ये स्थान नंदगांव में है। तो आपके सामने ललिता कुंड है, पीछे ललिता देवी का मंदिर है, ललिता बिहारी जी, ललिता ललिता बिहारी इनका मंदिर है। सामने झूला है, झूला स्थली, उसके बारे में आपको बताएंगे। और हो सकता है कि समय के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप देख लो, पता नहीं हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो यहाँ पर क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, इसका जीर्णोद्धार होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। इसलिए जब भी आ रहे हैं हम यहाँ पर तो इस स्थान को, वो तो रिकॉर्डिंग वीडियो कर ही रहे हैं लेकिन आपके अंदर का रिकॉर्डिंग जो इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो है वो टू डायमेंशनल है और आपका जो एंटीना है वो फाइव डायमेंशनल है। पांच इंद्रियों से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं ना, स्पर्श से भी ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ की हवा ठंडक को अनुभव कर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, चारों तरफ अलग अलग पेड़ है यहाँ पर, सुंदर सुंदर वृक्ष है, मोर है, पंछी है, कान से सभी अलग अलग पंछियों की आवाज़ सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। जबान से हम जल का ग्रहण कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, नाक से यहाँ की खुशबू ले रहे हैं। अलग अलग खुशबू आएगी आपको हर जगह पे। हाँ, लेकिन एंटीना ऑन रखो, सब बटन को ऑन रखो। सबसे बड़ा बटन जो है वो मन का ऑन रखो। सब बटन खुले रखो, बुद्धि के, मन के, चित्त के, आत्मा के, सब खुले रखो और जितना ले सके उतना ले लो। यही आपका रियल रिकॉर्डिंग है। फिर उस रिकॉर्डिंग को याद करने के लिए इस रिकॉर्डिंग को देखो, फिर आपको याद आएगा कि आप कहाँ बैठे थे और क्या बोला था उस समय, क्या आवाज़ सुनी थी उस समय पे। इस भूमि का एक क्षण के लिए भी आपको याद आएगा ना मुंबई जाने के बाद में, आपका जीवन धन्य है। यात्रा नहीं केवल, आपका जीवन भी धन्य है। इसलिए हम लोग कभी भी जल्दी नहीं करते हैं। आए 10 जगह का प्लानिंग किया होगा, चार ही देख सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार जगह को ऐसे देखो हृदय में डालकर घर पे लेके जाओ। हृदय से वो जगह आपके घर पे आनी चाहिए। वो घर में बैठ के आंखें बंद कर ली तो आपको उसकी याद आनी चाहिए, ललिता कुंड में बैठे थे, क्या कथा सुनी, क्या वातावरण का अनुभव किया, क्या दर्शन किया, कैसे आचमन किया, प्रेम सरोवर गए, उसकी याद आनी चाहिए। वहां पर इतना सुंदर कुंड था, पेड़ के नीचे बैठे थे हम लोग, सब वातावरण का आनंद लिया, है ना। ये वृक्ष जो हैं ये बहुत दिव्य वृक्ष हैं, वहां पर भी थे बहुत सारे, देखा ना आपने। ऐसा सघन वृक्षावली आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सब दिव्य वृक्ष हैं। अनंत साधु महात्मा जो हैं वो पेड़ के रूप में वृंदावन में आके भजन करते हैं। हाँ, अनंत महात्मा, यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज जो थे, पांडव, पांच पांडव जो थे, मैं आपको समय दूंगा कथा के बाद, 10 मिनट खाली बैठना और देखना बस सब कुछ। ललिता कुंड नंदगांव, तो साधु महात्मा पेड़ के रूप में आकर कली वृंदावन में भजन करते हैं, यहाँ पर वृक्ष बेल बनना चाहते हैं वो, इसलिए वृक्षों को यहाँ पर काटते नहीं ज्यादा, उनका आदर करते हैं। अगर घर में कोई वृक्ष घुस के आता है तो जगह बनाते हैं उसके लिए और उसके आवाजों में घर बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है अपने आँख से। क्योंकि ये सब कल्प वृक्ष है यहाँ के, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, जिसके सामने खड़े होकर आप भी कोई भी भगवान के लिए इच्छा करोगे ना वो पूर्ण कर देंगे आपकी। ऐसा नहीं आप बोलेंगे अच्छा प्रभु जी बताया, हम लोग अभी बोलेंगे हमको गाड़ी चाहिए, हमारा गाड़ी बहुत खराब हो गया है, नया गाड़ी चाहिए प्रभु जी, तो शायद नहीं पूरा होगा, आई डोंट नो, मेरे पास गारंटी नहीं उसकी। लेकिन आप बोलेंगे भगवान आपका मुझे प्रेम चाहिए, संतों की सेवा करने की इच्छा है, आपका दर्शन होता रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपका नाम मुख में बना रहे, आपके नाम के लिए रुचि उत्पन्न हो, ऐसी सारी इच्छाएं जो है झट 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 पूर्ण हो जाएगी आपकी। मुझे दोबारा दुनिया में नहीं आना है, आपकी सेवा में आपके चरणों में रुजू होना है, ऐसी सब इच्छा तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका बच्चा आपके पास आएगा बोलेगा मुझे पापा पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, सिगरेट चाहिए, हाँ तो आप क्या करेंगे, सब पे टिक मारेंगे, लास्ट में दो क्रॉस मार देंगे, है ना, मतलब प्रेम के वश सारा जो एप्लीकेशन है उसको पूरा नहीं करेंगे आप, जो बालक के लिए अच्छा है वही आप एक्सेप्ट करेंगे, बच्चा कुछ भी मांगेगा तो थोड़ी उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो बच्चे के लिए अच्छा है वही उसकी मांग पूरी करेंगे। भगवान तो बड़े सबसे प्रेमी पिताजी हमारे। तो ये कल्प वृक्ष के आप गले मिलिए, बिना भूले अभी यहां से उठेंगे एक एक पेड़ को जाकर गले मिलिए, बड़े प्रेमी वृक्षवल्लरी आमा सोयरी वनचरी, वो हमारे मेहमान हैं, हमारे क्या कहते हैं बुजुर्ग हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कल्प वृक्ष हैं। इस भावना से उनको गले लगाइए, गले मिलते वक्त हृदय की इच्छा प्रकट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, धाम में आकर क्या भेंट चाहते हैं, आप क्या लेके जाना चाहते साथ में, उनसे मांगिए। वो आपके देखो पीपल का वृक्ष है, नीम का है, फिर वो ताड़ का है, पीलू का वृक्ष है, कोई भूखछोकर है, हाँ ऐसे बहुत दिव्य वृक्ष यहाँ पर है, कोई बरगद का पेड़ है, कोई कदम का वृक्ष है, कोई तमाल का वृक्ष है। ओ जय श्री राधे श्याम,
झगड़ रहे हैं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ था, ललिता जी ने कहा डोंट वरी मैं आपके दुख का इलाज करूंगी, ऐसे कहा था ना उन्होंने, वहां पर कृष्ण भगवान से मिली थी और राधा रानी से मिली थी और उन्होंने बोला था कि हम आपका इलाज करेंगे चिंता मत करना। तो वो सीधे आई नंदगांव में, क्योंकि उनको पता था कि पूरे ब्रज में एक ही सावले रंग का है बालक, नीला रंग का एक ही बालक है और कोई नहीं है। लेकिन वो सबसे पहले यहाँ आई, ये जो एरिया है ललिता कुंड, ये बरसाने का नंदगांव के अंदर एम्बेसी है, कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट ऑफ बरसाना इन नंदगांव। यहाँ पर ललिता देवी का जगह है, हाँ यहाँ पर आके वो सब देखती है क्या चल रहा है नंदगांव में, नंदलाल कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या लीला हो रही है, सब खबर पहुंचाती है बरसाने के अंदर। ये उसका हेड ऑफिस है यहाँ पर, हेडक्वार्टर्स इन बरस इन नंदगांव। तो वो यहाँ आती है, फिर यहाँ से नंदगांव जाती है नंद भवन में, आपने देखा होगा ना ऊपर आते हो, शायद देखा नहीं होगा, पहाड़ है छोटा सा, उस पर नंद भवन है। हाँ शंकर भगवान ने यहाँ पर पत्थर का शरीर धारण किया है, वहाँ पर ब्रह्मा जी पत्थर बने, यहाँ पर शिवजी महाराज पत्थर बने, नाम क्या है नंदीश्वर पर्वत, उसके ऊपर नंद भवन विराजमान है, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम और सभी उनके चाचा ताऊ जी ताई जी अष्ट सखा सब विराजमान है वहाँ पर। हाँ नंद बाबा को दो बड़े भाई हैं, दो छोटे भाई हैं, बीच वाले नंद महाराज हैं, उपनंद सन नंदन नंदन चाचा और सुनंद सुनंद सनंदन नंदन चाचा और उपनंद, ऐसे पांच भाई हैं नंद महाराज को मिलकर। और बीच वाले भाई होते हुए भी जो बड़े भाई हैं सबसे, उपनंद बाबा वो सबसे बड़े हैं, परजन्य महाराज उनके पिताजी का नाम है, उन्होंने बड़े भाई को सबसे राज कारबार सौंप दिया। लेकिन उनको राज्य कारबार सौंप देने के बाद भी उन्होंने नंद महाराज को राजकारभार हाथ में दे दिया छोटे भाई को, क्योंकि उसके गुण ही ऐसे थे, बहुत महान गुणी थे, सदगुणी थे। उनके गुण देखते हुए नम्रता से उपनंद बाबा ने बड़े होके भी छोटे भाई को राजा बना दिया नंदगांव का। इसलिए इस गांव का नाम पड़ा है नंदगांव, नंदग्राम। एक है नंदीग्राम, वो उधर अयोध्या में है, वहां पर भरत महाराज जी श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे, तो अयोध्या के बाहर सीमा पर एक गांव है नंदीग्राम, वहां पर झोपड़ी बनाकर वलकल पहनकर साधु बनकर रहे थे। 14 वर्ष के लिए वनवासी के रूप में रहे थे, लेकिन राजा का कारोबार भी किया था। वो नंदीग्राम है वहां का, ये नंदग्राम है। तो नंद भवन जाती है वो, तो यशोदा मैया उनको मिलती है, वो ललिता देखो हमारा लाला जो है कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, माखन नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना खेल रहा है ना सो रहा है, दुखी हो गया, उदास होकर बैठ गया है, एकदम सुस्त हो गया बैठ गया, बोलते सुस्त हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कितने दिन हो गए। एक दिन वहां घूमने गया था, पता नहीं लौट के आया, अकेला लौट के आया और नाराज होकर आया था, कुछ ना माखन खाया, ना लोरी सुनता है, ना गाना सुनता है, कुछ करो। तो ललिता जी कहते कि मुझे उसका उपाय पता है, मुझे उसको अकेले में मिलने दो, मैं बात करूंगी उसके साथ। तो अंदर कक्ष में भेजते हैं, वो बिस्तर पे लेटे हुए नाराज होकर। जब बच्चे होते हैं ना, जब दुखी होते हैं ना, तो उल्टा सोते हैं, पता है ना आपको, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है ऐसा। हाँ, जब दुखी होते हैं तो उल्टा सो जाते हैं, मुंह छुपाते हैं तकिए के अंदर। तो हमारे महाराज जी ऐसे लेटे हुए हैं, तो ललिता जी आती हैं और पूछती हैं क्या बात है, तो कुछ बोलते नहीं है। क्यों माखन नहीं खा रहे हो, नहीं बोल रहे कुछ, क्या परेशानी बताओ, नहीं बोल रहे हैं। बहुत देर उकसाती है, फिर बाद में बोलती है कैसा है ना, उधर मैं बरसाने गया था, किसी ने कहा था कि वहां पर एक गोरी सुंदर लाली है, उसका दर्शन करने गया था और कुंज में छुपा था, अंधेरे कुंज में, और मैं उनका इंतजार कर रहा था और निश्चित रूप से वहां पर वो आ गई। वहां पर दिखते ही उसको मैं प्रेम से इतना विवल हो गया कि मैं बेहोश हो गया वहां पर, जैसे कि अनंत बाण चले मेरे हृदय पर प्रेम के। उसको देख दर्शन करते ही मैं इतना विवल हो गया कि मैं अपने होश नहीं संभाल सका, और मैं मेरी मुरली मोरपंख पीताम्बर के साथ में सब जमीन पर गिर गया। और जब मैं आंखें खुली मेरी बहुत दिन के बाद, बहुत देर के बाद, तो कुछ नहीं था वहां पर, ना वो सुंदर कन्या थी, ना कुछ था, सब उदास लग रहा था। मैं बहुत ढूंढा इधर उधर, मुझे कहीं दर्शन नहीं हुआ उसका, मैं उदास होकर अकेले लौट के आया नंदगांव में। तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना माखन अच्छा लग रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना खेलना अच्छा लग रहा है, ना ग्वाल बाल अच्छा लग रहा है, ना गैया अच्छी लग रही है। रोज मैं गैया के साथ खेलता था, अभी मुझे कुछ भी दिल नहीं हो रहा है। तो कहती है मैं तुम्हारा जो इच्छा, जो तुम्हारी जरूरत है वो करूंगी, अब मेरे साथ चलो, मैं उस कन्या से आपको मिलाऊंगी, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। तुरंत कृष्ण भगवान उत्साहित हो गए। तो माता ने कहा था कि जो करना है उपाय करो, तुम्हें इसको अकेले में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसका इलाज होगा। तो अकेला लेके आती है, इस जगह पे लेके आती है ललिता कुंड पे, और ललिता कुंड में उसको नहलाती है अच्छी तरह से, स्नान कराती है। इसका मतलब क्या हुआ, ललिता कुंड कृष्ण भगवान का चरणामृत हो गया ना, भगवान ने स्नान किया ना पूरा यहाँ पर। फिर स्नान करके सखियों को बुलाया ललिता जी ने, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए उनको, सुंदर सुंदर फूल लाके उसकी मालाएं पहनाई उनको, अलंकार पहनाए। लेकिन एक बताया उनको कि आपको मैं ले जाऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा रूप बदलना पड़ेगा, आप इस रूप में जा सकते नहीं वहाँ पर, आपको सखी बन के जाना पड़ेगा, यहाँ पर केवल सखी वेश को ही प्रवेश है, तो सखी बन के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके उनको सखी बनाया उन्होंने, श्यामा सखी बनाया उनको, हाँ, बहुत सुंदर चेहरे पर पत्रावली बनाया। पत्रावली बताया क्या होता है, पत्रावली मतलब जो डिज़ाइन बनाते ना, सब पुराने जमाने में बनाते थे डिज़ाइन, उसको क्या पत्रावली कहते हैं, वो चेहरे पे बनाते हैं, हाथ पे बनाते हैं, ऐसे पूरे पैर पे बनाते हैं, पूरे शरीर पे बनता है पत्रावली, बहुत सुंदर डिज़ाइन होता है। और ललिता जी इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, विशाखा जी भी बहुत एक्सपर्ट हैं, और इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका, और यहाँ से लेके जाते हैं, कहते हैं कि हम भी आपको नई दुल्हन बना के लेके जाएंगे। हाँ, तो नई दुल्हन बनने का एक लाभ होता है, कैसे, नहीं उनका बहुत घूंघट बड़ा लगाते हैं उसको, पूरा यहाँ से ना लंबा घूंघट मारते हैं उसको, तो कोई चेहरा देख सकता नहीं है, और पूछेंगे बोलना है नहीं 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 दुल्हन है ना, तो उसको घूंघट रखना पड़ता है, ऐसे करके ले जाएंगे आपको। सारे जितने भी कस्टम लगे हुए हैं ना एजेंट, सब सब पार करते करते एकदम अंदर ले जाएंगे आपको। सब पार करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है श्यामा सखी बनना। तो यहाँ सुंदर वस्त्र धारण करके उनको माला वाला पहना के श्यामा सखी बना के ले जाते हैं उनको। और यहाँ पर आगे एक गाँव है, अभी उस गाँव में कुछ दर्शन नहीं है इसलिए आपको ले जाना फायदा नहीं कुछ, क्योंकि बहुत पहले मैं गया था। छोटा सा मंदिर है, उसका नाम है कजरोठा या काजली ऐसा नाम है उसका। वहाँ पर उनको काजल लगाया गया, सब सखियों ने मिलकर काजल लगाया उनको। और आगे जाकर चले गए गांव बरसानी तक, और बरसाने में सब लोग बोल रहे हैं कौन सखी आ रही है, नहीं ये नंद के यहाँ जो है नई नई दुल्हन ब्याही है, इसलिए नंद महाराज के घर पे नई नई दुल्हन आई, वो श्री जी को मिलना चाहती है, इसलिए वो शर्मा के मारे, शर्म के मारे वो घूंघट नहीं खोल रही। ऐसे करके सब ललिता विशाखा उनको लेके जा रहे हैं। और जैसे कि कुतूहल बढ़ता ना, कुतूहल कह रही इतनी सुंदर सखी, इतनी सुंदर श्रृंगार करके आ रही है, इतना मेहंदी लगाई है, सब पत्रावली बनाया है, कौन है ये, किसके घर की बहू है, ऐसे करते करते बहुत सखियाँ इकट्ठा हो जाती है। बाय द टाइम वो पहुँचते हैं नंद ब्रजभानु महाराज के घर तक, बहुत सारी सखियाँ जमा हो जाती है। और कीर्ति मैया पूछते हैं कौन आई है, तो ललिता विशाखा बोलते हैं नहीं वो नंद घर के, नंद के घर में गाँव में नई नई दुल्हन है ना, वो श्री जी का दर्शन करने के लिए आई है, बहुत व्याकुल है श्री जी को मिलने के लिए। अंदर लेके जाती है और श्री जी के महल में एकांत में वो दर्शन कराती है घूंघट खोल के, यही वो बालक था जो बेहोश होकर गिर गया था, उसका दर्शन कराती है। ये है पार्ट टू। तो ऐसा ललिता जी ने बहुत सुंदरता से कुशलता से उनको दर्शन कराया कृष्ण भगवान का, राजा रानी को। तो ललिता कुंड बहुत सुंदर जगह है, यहाँ से बैठ के आके ललिता जी सब प्लानिंग करती है कहाँ से कैसे कृष्ण भगवान को राधा रानी को मिलाना है। हाँ, कोई द्वेष नहीं उसके अंदर कि भाई उनको ही मिलेंगे हमको नहीं मिलेंगे, सब लोग एक ही तमन्ना करते हैं राधा कृष्ण का मिलन कैसे हो जाए, सबके हृदय में एक ही त्याग की भावना है। खुद भी चाहते हों लेकिन मन में विचार और प्रयत्न करते हैं कि वो राधा कृष्ण कैसे मिले, उनके मिलने की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो मंदिर है उसमें ललित बिहारी यानी कि ललिता जी की बिहारी प्रेमी युगल कृष्ण भगवान उसका दर्शन है। और ये झूला है, यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान झूला झूलते हैं। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता आपको मैं कि ललिता और विशाखा प्रधान सखियाँ हैं भगवान की, राधा रानी की, और प्रधान सखियाँ हैं। और उनके निर्देश में जो वृंदा देवी है, वृंदा रानी करके भगवान की एक विशेष गोपी है, बहुत प्रिय है भगवान को, इतनी प्रिय है कि जब ही भगवान ने राधा रानी को वृंदावन भेंट दिया तो राधा रानी ने वृंदावन जो है वृंदा रानी को दे दिया, तब से उसका नाम वृंदावन पड़ा है। एक है गौलोक जहाँ पर गायें रहती हैं, दूसरा है वृंदावन। वृंदा देवी के प्रेम के कारण इस पूरे भूमि को वृंदावन नाम दे दिया है, इतना भगवान वृंदावन वृंदा रानी को चाहते हैं। तो वृंदा रानी जो है वो भगवान और राधा रानी का जो मिलन का प्लानिंग है पूरा करती है वो। अभी हम जाएंगे 20 तारीख को वृंदा कुंड में जाएंगे, तब पूरा विस्तार में बताएंगे आपको। नंदगांव में वृंदा कुंड जो है वो नंदगांव में है। क्या हो गया उसका? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
चाहिए. थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद. वृंदावन धाम का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमेशा ठाकुर जी का नाम गुणगान करते रहना चाहिए. तो मैं क्या बता रहा था, वृंदाकुंड. तो ये वृंदा देवी जो है ये सभी वृंदावन के जितने भी स्थान हैं उसका अवलोकन करती है और फिर वो तय करती है कि कौन सा लीला करना है, किस जगह पे करना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन से फूल खिलने चाहिए, कौन से रंग का वस्त्र होना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए. तो सब का स्टडी करती है, फिर वो तय करते कि आज इनको यहाँ मिलाएंगे. फिर उनका श्रृंगार होता है, फिर कौन सा भोजन करना है, कौन से गीत गाना है, कौन से राग में नृत्य करना है, कौन से ताल में नाचना है, कौन से राग में गाना है, कौन से वाद्य बजाना है, कौन कौन क्या क्या बजाएगा, कौन 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 से व्यंजन बनाएगा, और लीला में कौन कौन सेवा करेगा, कौन चावल ढुलाएगा, कौन पान खिलाएगा, कौन बिस्तर बनाएगा, कौन सुलाएगा, कौन गीत गाएगा, हर प्रकार का जो मेगा और माइक्रो मैनेजमेंट करती है वो. हाँ, जब रामचंद्र प्रभु कैसे करते हैं, सब कौन सा एक्टिंग कौन करेगा, डायलॉग कौन सा बोलेगा, कौन से वस्त्र पहनेगा, कैसे एक्टिंग करेगा, पूरा बताना पड़ता है ना उनको, पूरा एंट्री कहाँ से करेगा, हंसेगा रोएगा, कैसे बोलेगा, सब कुछ बोलना पड़ता है. वैसे पूरा डायरेक्शन जो है उसका प्लानिंग ललिता विशाखा के नेतृत्व में वृंदा रानी स्वयं करती है. कंप्लीट मैनेजमेंट, फुल प्लानिंग, एकदम डिटेल में, यहाँ तक कि कौन सा पक्षी क्या बोलेगा वो भी वो तय करती है. वृंदा देवी का ऐसा वैशिष्ट्य है कि वृंदा देवी हर जीव की भाषा जानते हैं. यहाँ के जितने पेड़ हैं, जितने पंछी हैं, जितने पक्षी हैं, सबकी भाषा जानती है वो, और सबको गाइड करती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको. जब हम लाएंगे राधा कृष्ण को यहाँ कर, सज धज कर लाएंगे, तो आपको क्या बोलना है, कौन से गीत गाना है, कोयल क्या गाएगी, तोता क्या गाएगा, मैना क्या गाएगी, सब तय करती है वो. कौन से मौसम में झूला खेलना है, कौन से मौसम में होली खेलनी है, कौन से मौसम में रास रचाना है, कौन से मौसम में कहाँ मिलना है, सब कुछ वो तय करती है. लीला का टाइप तय करती है, लीला का स्थान तय करती है, लीला के पात्र तय करती है, पूरा बैकग्राउंड सेट करती है वो कंप्लीट. और उसके पूरे ब्रज के अंदर सब जगह पर उसके स्टोर हाउसेस हैं, अलग अलग ड्रेसेस के, अलंकार के, स्थान के, उसमें मेज है, बिस्तर है, फूलों का व्यवस्था है, रंग का व्यवस्था है, कौन सी तरफ से हवा बह रही है, सब कुछ व्यवस्था उसके पास में उसकी है. हवा भी उसकी इच्छा से उस दिशा में बहेगी उस दिन, जिसमें उनका डायरेक्शन होगा कि आपको यहाँ से हवाई आनी चाहिए, तो वहाँ की हवा जो है वहाँ के फूलों की खुशबू लेकर आएगी राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए. चंद्रमा भी अपनी तरफ से जैसा होना चाहिए वैसे वो प्लानिंग करेगी, उसका हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं, हम लोग इतना प्लानिंग नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड एज मेगा मैनेजमेंट एंड माइक्रो मैनेजमेंट, एकदम डिटेल में होता है पूरा. तो यहाँ पर झूले का इंतजाम होता है, तो यहाँ पर अधिकतर राधा कृष्ण के ये व्यवस्था होती है. एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पर झूला झूलने का प्लानिंग था, और जैसे आप जानते हैं ना कि जब वो प्लानिंग होता है तो कृष्ण को कौन सजाएगा उसका प्लानिंग होता है, और कहाँ से लेके आएंगे उनको, राधा रानी को कौन सजाएगा और कहाँ से लेके आएंगे उसका प्लानिंग होता है. तो राधा रानी का ड्रेस और श्रृंगार जो हो रहा था थोड़ी देरी हो गई उसके अंदर, कृष्ण भगवान सज धज कर यहाँ पर आके तैयार रह गए हैं, सी इज रेडी ओवर हियर, और राधा रानी थोड़ा देर हो गया, और ललिता जी उसके पहले आके रेडी थी यहाँ पर रिसीव करने के लिए. उतने नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि ने कहा अरे ललिता जी आपने इतना सेवा किया है, राधा रानी को देर हो रही है, तब तक आप झूल लो ठाकुर जी के साथ में. तो ललिता जी संकोच करते, नहीं नहीं नहीं, ये झूला उनके लिए बना है, श्री जी के लिए बना है. नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या है, आप उसकी सहेली हो, दोस्त हो, वो क्या बुरा मानेंगे, आप झूल लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं. तो बहुत आग्रह करते हैं वो. तो कुछ लोग बोलते हैं नारद मुनि का सलामत मानवा, ये बहुत प्रॉब्लम करते बाद में. लेकिन वो नारद मुनि बहुत जिद करते हैं, बहुत प्रेम से समझाते हैं, नहीं 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 नहीं. तो आखिर में ललिता देवी राजी हो जाती है, कृष्ण भगवान भी राजी हो जाते हैं, और दोनों को बिठाते हैं और झूला झूलाना आरंभ करते हैं उस झूला के स्थान पर. जैसे ही ललिता जी झूला पर बैठती है, नारद मुनि झट से बरसाने पहुंचते हैं. तब ललिता जी को यहां बिठा के जाती है, तो राधा रानी तैयार होके लेट होकर आ रही है, आ रही है. अरे राधा रानी कहाँ जा रही हो, लेट हो गया है, झूला झूलना था. अरे क्या झूला झूलोगी तुम, वहां तो पहले से ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं. तो राधा रानी आते हुए देखते, अरे सब इतना बड़ा प्लानिंग किया मेरे लिए और खुद झूल रही है. तो राधा रानी गुस्सा आ जाता है, मान करके चले जाती है. तो सखिया बोलते हैं मैंने कहा था नारद जी का मत सुनो फिर तुमने नहीं सुना तो ये लीला यहाँ पर चटपटी लीला ही है। इसके ऊपर ललिता जी ने राधा रानी ने मान भी किया है, उसको मनाने के लिए सब गए हैं और उन्हें ऐसे कहते हैं कि उस समय कृष्ण भगवान पैर छूते हैं, पैर पे गिर जाते हैं, राधा रानी के पैरों में अश्रुओं का अभिषेक करते हैं, गीत गाते हैं, नमस्कार करते हैं, माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर ललिता जी कहते हैं अभी क्या करें, अभी आप जाओ और बांसुरी बजाओ। तो बांसुरी का स्वर सुनते ही सब मान उनका पिघल जाता है। बांसुरी में ऐसी शक्ति है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, हम जब जाएंगे ना काम्यवन जाएंगे तो पूरा बांसुरी का महात्म्य बताएंगे आपको, बांसुरी क्या चीज है उसका पूरा वर्णन करेंगे यहाँ पर चरण पहाड़ी पे। तो बांसुरी बजाते हैं तो फिर उनका मान शांत हो जाता है, फिर वो आपस मिलाप करने के लिए आती है। तो ऐसा ललिता देवी का विशेष सेवा है भगवान का। ललिता देवी जो है वो बड़ी है राधा रानी से और थोड़ी सी तेज है स्वभाव में। हाँ, राधा रानी बहुत मृदु और कोमल और सरल हृदय की है, बहुत भोली वाली है। जब भी कोई लफड़ा होता है ना ऐसे कोई रोक लेते हैं, रास्ते में आके डंडा दिखाते हैं और मटकी फोड़ देते हैं, तो ललिता जी सामने आती है और सेनापति के रूप में राधा रानी के पक्ष से झगड़ा करती है। शी इज द एडवोकेट ऑफ गोपीज फ्रॉम बरसाना। तो तेज स्वभाव की है लेकिन बड़ी कृपालु है, वो भक्तों पर बड़ी दया करती है। हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो ललिता जी के अवतार हैं। और एक समय लीला ऐसी हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर को, ये सब गौड़ीय वैष्णव का साहब तुम संभाल लो, इन लोगों को समझता नहीं कुछ कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने भली जनता में चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी डाल के वो पानी पिया था। तो महाप्रभु जी हृदय से बहुत खुश हुए थे क्योंकि भगवान है उस समय वो, लेकिन बाहर से उन्होंने क्रोध दिखाया था और स्वरूप दामोदर से कहा था कि जो बंगाली वैष्णव है इनको शिष्टाचार पता नहीं है कि जनता में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सन्यासी हूँ और सब जनता में मेरे पैर पे पानी डालकर उन्होंने पानी पिया है, ये अच्छी बात नहीं है, इनको जरा ट्रेनिंग दे दो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में कि तब से स्वरूप दामोदर ने सारे गौड़ीय वैष्णवों का भार जो है अपने जिम्मे ले लिया, यानी कि हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, हम सबका जो देखभाल स्वयं ललिता जी करती हैं, यानी कि स्वरूप दामोदर जी ललिता जी स्वयं है ना। तो ललिता जी बड़ी कृपालु हैं और उनके गांव में हम जाएंगे 18th of February, दो दिन के बाद उनके गांव जाएंगे, ऊंचा गांव, उनका गांव जो है 4 किलोमीटर दूर है बरसाने से, वहां पर उनका घर है, उनके पिताजी माताजी का स्थान है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर सुंदर लीला वहां पर हुई है। तो वहां पर ललिता जी का पूरा वर्णन करेंगे, ललिता जी कहाँ है, उनका कैसा जन्म हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको। तो ऐसा ही सुंदर स्थान है ललिता कुंड, यहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना कीजिए कि हम सब मिलकर राधा कृष्ण के मिलन के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनको आनंद देने के लिए हमें थोड़ा सा मौका मिले तो अच्छा रहेगा। ललिता जी का काम ही यही है, उनके नेतृत्व में सब गोपियाँ राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करते हैं, उनको मिलाने का लीलाएँ रचाते हैं सब लोग। और ये जो आप वहाँ जो माताएं बैठी हैं, आप देख रहे हैं ना, गोल बना हुआ है, देख रहे हैं ना, बीच में सिंहासन है, उसको रास मंडल कहते हैं। ये इन स्थानों पर भगवान रास करते हैं, वो जो सिंहासन बैठा है बनाया उसके अंदर राधा कृष्ण विराजमान होते हैं और उस पर बिठा कर उनको चामर ढुलाते हैं, उनको पान खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनकी आरती करते हैं, गीत गाते हैं, कोई वाद्य बजाता है, कोई नृत्य करता है, फिर भगवान उठते हैं, फिर सब सखियों के साथ में विस्तार करता है अपने रूप का, हर एक गोपी के साथ में हर एक भगवान अपना रूप बना लेते हैं और नृत्य करते हैं, उसको रास मंडल कहते हैं। आप कहीं जहाँ जहाँ जाएंगे आपको रास मंडल बने मिलेंगे, हाँ वहाँ पर भी रास मंडल था, सब जगह रास मंडल बने हुए हैं, भक्त लोग भी बड़े प्रेम से भगवान के लिए रास मंडल बना के अर्पण करते हैं। तो रासस्थली भी है, ये गोपियों की क्रीड़ास्थली भी है, यहाँ पर भगवान खुद स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, जल क्रीड़ा खेलते हैं, जल के अंदर बहुत सारी लीलाएँ होती हैं, जल के अंदर कभी मोर पंख छीन लेते हैं, कभी वस्त्र छीन लेते हैं, कभी दुपट्टा छीन लेते हैं, कभी कुछ छीन लेते हैं, पानी में भाग के चले जाते हैं, फिर पानी में भागदौड़ी होती है, फिर वो छीन लेते हैं वापस देते हैं, ऐसे बहुत सारा सुंदर सुंदर लीला होता है। भगवान का जल क्रीड़ा नाम का एक विशेष चैप्टर है पूरा, एक उसमें कई प्रकार के जल स्थान हैं, कई प्रकार के कुंड हैं, हजारों कुंड हैं ब्रज के अंदर जहाँ भगवान ने कुंड बनवाए हैं और वहाँ जल क्रीड़ा भगवान खेलते हैं। कभी बोट में बैठ के खेलते हैं, कभी ऐसे ही खेलते हैं, कभी स्नान करते हैं, कभी अकेले स्नान करते हैं, कभी साथ में स्नान करते हैं, कभी जल में गेंद खेलते हैं, कभी अंडर वाटर जाते हैं। हाँ, हम जाएंगे चरण पहाड़ी में, तभी भी लीला बताएंगे आपको। तो जल क्रीड़ा ये भगवान की लीलाओं का एक विशेष अंग है। और ब्रज में ऐसे अनंत कुंड है जहाँ पर भगवान ने सखियों के साथ में बहुत चटपटी जल क्रीड़ा की हुई है। तभी हम जहाँ पर मंदिर जाएंगे, ललिता बिहारी के दर्शन करेंगे, झूले को दर्शन करेंगे, जल का आचमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट आप बैठिए, आराम से सब दिशा में देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन पंछी क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा वृंदादेव को फोन लगाइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं जरा बताओ। वृंदादेव बताएगी आपको ये क्या बोल रहे हैं, सब जानते हैं वो किसके मन में क्या क्या है और कौन कौन पंछी क्या क्या बोल रहा है, सब उनको पता चलता है। उनको वो गाइड भी करती है कि आपको क्या बोलना है अभी, जब राधा रानी आएगी यहाँ पर तो क्या बोलना है आपको। हम बोलते हैं ना बच्चे को, गेस्ट आएंगे तो पहले गुड मॉर्निंग बोलना, फिर नमस्ते बोलना, फिर बड़े को पैर छूना, तो बच्चे लोग वैसे ही करते हैं। तो वैसे ये सब हमारे को स्वागत कर रहे हैं। हाँ, इस धाम का जो आनंद है उसको आपको थोड़ा टेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो ललिता कुंड धाम की, ललिता ललिता बिहारी जी की, जल क्रीड़ा की, झूला लीला की, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।